हरे कृष्णा। हर एकादशी को हम श्री रामानुजाचार्य की कथाओं का वर्णन करते आए हैं। पिछले एकादशी को हम ये सुन रहे थे कि किस तरह से रामानुजाचार्य ने अपने कई ब्राह्मण शिष्यों का मान भंग किया, क्योंकि वो धनुर्दास नाम के रामानुजाचार्य के एक शिष्य के प्रति द्वेष करते थे। इसका कारण यह था कि रामानुजाचार्य जब स्नान करने जाते तो कुरेश या दाशरथी को साथ में लेकर जाते और लौटते समय स्नान करने के बाद धनुर्दास का आधार लेकर आते। अब वैसे करना चाहिए था उल्टा, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है वो स्नान के बाद शुद्ध होता है, स्नान के पहले नहीं। तो इसलिए अशुद्ध अवस्था में एक शूद्र का सहारा लेने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन स्नान करने के बाद जब वो शुद्ध हुए तब एक ब्राह्मण का सहारा लेना चाहिए था। लेकिन रामानुजाचार्य ने उल्टा किया, अशुद्ध अवस्था में ब्राह्मण का सहारा लिया और शुद्ध अवस्था में एक शूद्र का। तो उनके कई शिष्य थोड़े बहुत विचलित हो गए। रामानुजाचार्य को इस बात का पता चल गया और उन्होंने अच्छा सबक सिखाए उनको। उनको धोतियां फाड़ दी रात को और आपस में उनके झगड़े हुए। बाद में उन्होंने उनको धनुर्दास की पत्नी हिमांबा उनके पास भेजा उनके गहने चोरी करने के लिए। और वो कथा आपने सुनी कि किस तरह से हिमांबा ने अपने गहने एक तरफ के दे दिए, दूसरे तरफ के जब देने वाली थी तो सारे जो ब्राह्मण शिष्य थे वो डर के भाग गए। और फिर धनुर्दास जब लौट कर आए तो उन्होंने अपने पत्नी को काफी डांटा और ये ब्राह्मण शिष्य खिड़की से सुन रहे थे। तब रामानुजाचार्य ने उनसे उनको बताया कि कौन श्रेष्ठ है, आप जो कि अपने धोती पे आ सकते हैं या धनुर्दास जो अपने गहनों से निरा सकते हैं, कौन श्रेष्ठ है? तब अपना सर झुकाकर सारे शिष्यों ने कहा कि धनुर्दास श्रेष्ठ है। तो इस तरह से रामानुजाचार्य ने सिखलाया कि भक्ति में कोई जाति भेद नहीं होता है। महापूर्ण जो कि उनके गुरु थे उन्होंने भी एक शूद्र के अंतिम संस्कार किए और जब यह खबर रामानुजाचार्य तक पहुंची तो वो भी वहां पर गए और महापूर्ण ने बतलाया उनको कि ये शूद्र को शूद्र नहीं मानना चाहिए, वो एक महान भक्त थे और भक्त के लिए ऐसे कोई विचार हमें नहीं करने चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिए कि युधिष्ठिर महाराज ने विदुर की सेवा की, उनके अंतिम संस्कार किए। प्रभु रामचंद्र जी ने एक पक्षी जटायु के अंतिम संस्कार किए। शूद्र की बात दूर है, वो तो मनुष्य भी नहीं थे। उस समय रामानुजाचार्य ने अच्छा उपदेश प्राप्त किया महापूर्ण से। आगे चल के हमने ये सुना कि किस तरह से चोल राज्य के राजा कुलतुंग वो शैव हो गए थे और वैष्णव से घृणा करने लगे और वो ये चाहते थे कि सारे वैष्णव शैव बन जाएं। और उनको पता चला था कि रामानुजाचार्य प्रमुख वैष्णव आचार्य हैं, अगर वो शैव बन जाएं या जबरदस्ती उनको शैव कराया जाए तो फिर सारे वैष्णव शैव बन जाएंगे। तो रामानुजाचार्य को उन्होंने बुलावा भेजा, लेकिन कुरेश उनकी जगह में आए महापूर्ण के साथ रामानुजाचार्य के वेश पहनकर। और रामानुजाचार्य कुरेश के गृहस्थ सफेद कपड़े पहनकर जंगल की ओर निकल पड़े। उधर चोल राज के दरबार में दोनों की आंखें निकाली गईं और भेजा गया उनको वापस महापूर्ण। उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, भगवान के धाम में चले गए, कुरेश अकेले रह गए, श्रीरंगम चले आए वापस। उधर रामानुजाचार्य जंगल में चलते चलते चांडालों ने उनकी बहुत सेवा की, उनको खिलाया पिलाया, उनकी रक्षा की। आगे भ्रमण करते करते कई तीर्थ स्थानों में गए, आखिर में भक्तग्राम आए। भक्तग्राम के पास और एक राज्य था जिसमें एक जैनी राजा राज कर रहा था जिसका नाम था विट्ठल देव, राजधानी का नाम था तोडन्नूर। तो वहां पर जब वो आए तो शहर के बाहर अपना निवास स्थान बना लिया थोड़े दिनों के लिए। उस समय वहां जैनी राजा की जो कन्या थी उसके ऊपर कोई भूत सवार हो गया था, तो उसके बारे में हम फिर से चर्चा आज से शुरू करेंगे, हालांकि संक्षेप में पिछली बार भी चर्चा की थी। तो जब इस तरह से कन्या के ऊपर भूत सवार हो गया तो राजा विट्ठल देव की पत्नी बहुत चिंतित हो गई। इस तरह से भूत सवार हो गया था इस राज कन्या के ऊपर कि उसका व्यवहार बड़ा विचित्र हो गया था, ऐसी ऐसी चीजें करती थी जो कहने के लिए भी मुश्किल है। एक श्री वैष्णव वहां पर रहा करते थे उस गांव में, तो श्री वैष्णव ने रानी की परिस्थिति देखी और पूछा कि क्या समस्या है। तो रानी ने बताया कि मेरी पुत्री की यह दशा है। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, एक श्री वैष्णव आचार्य श्री रामानुजाचार्य यहां शहर के बाहर निवास कर रहे हैं, मैं भी उनका शिष्य बन चुका हूं, और हमने सुना है कि पहले भी एक राजा था उसकी पुत्री की भी यही दशा थी और उन्होंने उनको भूत से मुक्त करा दिया था, तो उनको यहां बुलवाइए। और फिर उस श्री वैष्णव ने रामानुजाचार्य का गुणगान करना आरंभ किया। रानी बहुत प्रभावित हुई, राजा के पास जाकर कहने लगी कि हमें ये रामानुजाचार्य को यहां बुलाना चाहिए, लगता है ये बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। उधर ये राजा सोच रहे थे कि मुझे एक दावत के लिए बुलाना चाहिए मेरे सारे जैनी गुरु गुरुजनों को, जो भी जैन आचार्य पुरोहित वगैरह थे उनको निमंत्रण देना चाहते थे प्रसाद के लिए। लेकिन जब वो गुरुजन वहां पर आए जैनी, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। रानी ने चेतावनी दी थी राजा को कि ये लोग आपके साथ प्रसाद नहीं लेंगे, भोजन नहीं लेंगे, क्योंकि उनके प्रथा के खिलाफ है। क्यों प्रथा के खिलाफ था? क्योंकि ये राजा विट्ठल देव, इनकी छोटी उंगली कटी हुई थी। जो दिल्ली के मुसलमान राजा थे उन्होंने यहां पर कब्जा कर लिया था, आक्रमण किया था एक बार कई साल पहले, और ये बताने के लिए कि मैं इस राजा के ऊपर विजय हुआ हूं, उन्होंने उस राजा की अर्थात विट्ठल देव की छोटी उंगली काट दी थी। तो इन जैनियों ने बताया कि आप की छोटी उंगली कट गई है, अभी हम आपके साथ नहीं खा सकते हैं, आपके यहां पर हम प्रसाद ग्रह भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। रानी उनकी उनके पति थे शैव, मां थी जैन, लेकिन वो वैष्णव धर्म के प्रति आकर्षित हो रही थी। तो उन्होंने राजा को बतलाया कि छोड़ो इन जैनियों को, जो कि इस तरह से आपके साथ भी प्रसाद लेने के लिए तैयार नहीं है, हम रामानुजाचार्य के शरण में जाएंगे, हमने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, इतने महान भक्त हैं, आचार्य हैं, उनको बुलवाइए। तो राजा को पहले से ही अभी इन जैनी गुरुओं के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया था, वो भी जैन थे, लेकिन उन्हीं के गुरुजनों ने इस तरह से व्यवहार करने पर उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि मैं इन जैनी गुरुजनों के ऊपर बदला लूंगा। तो जब रामानुजाचार्य को संदेश मिला कि राजा उनसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो किसी राजा वाजे के पास नहीं जाने वाला, मैं सन्यासी हूं, मुझे क्या लेना देना इन राजा लोगों से। लेकिन जिस व्यक्ति ने रानी को रामानुजाचार्य के बारे में बताया, तोंडन्नूर नंबी, जो कि रामानुजाचार्य के शिष्य बने थे, उन्होंने रामानुजाचार्य से निवेदन किया कि आप ऐसा नहीं कीजिए, आपकी कृपा इस राजा के ऊपर दीजिए, अगर ये राजा वैष्णव बन गया तो सारा राज्य वैष्णव बन सकता है, हजारों लोग वैष्णव बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो मेलकुट या तिरुनारायणपुरम जो महत्वपूर्ण प्राचीन तीर्थ स्थान है तो वो भी इस राजा के राज्य में पड़ता है। आपकी तो कई सालों से इच्छा थी कि इस तीर्थ स्थान में अच्छी तरह से कोई पूजा अर्चा हो, कोई भजन हो, तो इस तरह से कहने पर रामानुजाचार्य तैयार हुए और आगे चले। और जैसे ही वो आए राजा के दरबार में तो राजा ने उनको बड़ा अच्छी तरह से स्वागत किया। और उस समय उनकी पुत्री एक जो भूत सवार होने की वजह से वो निर्वस्त्र अवस्था में सड़क पे जाके भाग जाती थी। और इस समय जब रामानुजाचार्य वहां पर आए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि थोड़ा जल लाओ और एक पात्र लाओ। जब पात्र में भरकर जल लाया तो उन्होंने अपने चरण कमल उस पानी में रख दिए और चरण कमल निकाल दिए और कहा कि अब ये जल छिड़को इस राजकन्या के ऊपर, मतलब उनके चरणामृत। और जैसे ही छिड़क दिया तो वैसे ही वो भूत वहां से दूर भाग गया उसके शरीर से। और राजा ने ये दृश्य देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, प्रभावित हो गए और तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया रामानुजाचार्य को, और उनके शिष्य बने और उनकी पत्नी भी शिष्य बन गई। रामानुजाचार्य ने उन सबको दीक्षा दिया, साथ साथ में जो वहां के थोड़े बहुत जैनी लोग थे उनको भी दीक्षा दी। अभी विट्ठल देव का नाम विष्णुवर्धन हो गया। ये विट्ठल देव का नाम बिट्टी देव भी था। कन्नड़ में बिट्टी मतलब क्या है? बिट्टी बिट्टी, उनको बिट्टी देव राय कहते थे क्योंकि उनका ये उंगली की वजह से, तो उंगली वाला भगवान, उंगली वाले जिनका उंगली नहीं है, इसलिए उनका नाम हो गया था बिट्टी देव राय। तो वहां की भाषा होगी कोई भी। तो अभी बिट्टी देव राय या विट्ठल देव राय वो बन गए विष्णुवर्धन राय, विष्णु का नाम। और विष्णुवर्धन का जब परिवर्तन हुआ इस तरह से तो वहां के जो जैनी लोग थे, गुरुजन और अन्य लोग बड़ी संख्या में वहां थे, वो सारा राज्य जैनों का था, तो बहुत गुस्सा हो गया उनको, उनको बहुत क्रोध आ गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब रामानुजाचार्य वहां तोडनूर के बाहर एक नरसिंह मंदिर में जहां वो निवास करते थे वहां पर 12,000 ऐसे जैनी लोग आए, बड़े आक्रमणात्मक भाव में थे और वो कहने लगे कि आप हमारे राजा के साथ कुछ दखलंदाजी करने के पहले हमारे साथ आपको वाद विवाद करना होगा, तर्क करना होगा, और ये हम आपको हमारी वैष्णव हमारे जैन सिद्धांत श्रेष्ठ है ये आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो रामानुजाचार्य सोचने लगे कि 12,000 ये लोग आए हैं और सबके साथ एक साथ तर्क करना ये कैसे संभव हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि बिजली से बचने के लिए मैंने बिजली के गरजने का आश्रय ले लिया है, या एक सांप से बचने के लिए किसी बिच्छू का आश्रय ले लिया है, अब कहां क्या परिस्थिति है ये। तो उस समय तोंडानूर नंबी वो वहां आए और कहने लगे कि हे प्रभु गुरुदेव, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, आपका जो आपकी जो दिव्य शक्ति है वो आप क्यों नहीं प्रदान करते ताकि सबके ऊपर बड़ी कृपा हो जाए। तो रामानुजाचार्य ने सोचा और कहा ठीक है वही सही। रामानुजाचार्य फिर उस नरसिंह देव मंदिर के अंदर गए और उन्होंने आदेश दिया कि एक पर्दा सामने लगा जाए, और वो पर्दे के पीछे आए और वो 12,000 जो भी जैनी लोग आए थे वो पर्दे के उस पार थे। और बताया जाता है, श्री संप्रदाय के लोग ऐसे मानते हैं कि रामानुजाचार्य शेष के अंश अवतार हैं, उनको विशेष शक्ति शेषनाग ने प्रदान की है। तो उन्होंने एक साथ 1,000 जैनियों के साथ में वाद किया, अलग अलग वो एक जगह बैठे थे और 1,000 जैनी लोग उनको अलग अलग तर्क बोल रहे थे और हर 1,000 लोगों का एक साथ में वो उत्तर दे रहे थे, उनके साथ वाद विवाद कर रहे थे और ऐसे कई दिनों तक चला वाद और अंत में इनको सबको हरा दिया उन्होंने, और फिर वो ज्यादा से ज्यादा लोग सब वैष्णव बन गए। और राजा ने भी उनको काफी टोका कि आप जब हार गए हैं, आप सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको भी वैष्णव सिद्धांत वैष्णव धर्म का स्वीकार करना चाहिए। और आज भी तोडन्नूर में, जो कि मेलकोटे के पास है, मैसूर के पास में, इस जगह में अनंत, इस नरसिंह मंदिर में आप देखेंगे कि पीछे अनंत शेष के की तस्वीर है, जहां पर उनके जिनके सामने रामानुजाचार्य बैठे थे। मतलब इस तस्वीर से बताया जाता है कि अनंत शेष स्वयं ने आकर ये हजार लोगों के साथ एक साथ वाद किया था और जैनों को हरा दिया था। तो इस तरह से विष्णुवर्धन कट्टर वैष्णव बन गए, इतने कट्टर बन गए कि जितने भी सारे जैन मंदिर थे उन्होंने राज में सबको तोड़ दिए, और तोड़कर फिर उसको जो भी पत्थर वगैरह थे उससे वहां पे कुंड वगैरह बनाए, सरोवर कुंड बना दिए, ताकि सारे राज्य भर में पानी की व्यवस्था अच्छी तरह से हो जाए। साथ साथ उन्होंने पंच नारायण स्थापित किए, मतलब पांच प्रमुख नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जगह जगह स्थापित किए, और बड़ी संख्या में जैन, हजारों हजारों की संख्या में जैन लोग वो वैष्णव बन गए। तो रामानुजाचार्य की विशेष शक्ति के या उनके प्रभाव से ये चीज हो गया, सारा राज्य का परिवर्तन हो गया। और फिर विष्णुवर्धन ने उस जगह का नाम, उस गांव का नाम आगे चल के रख दिया मेलकोटे या तिरुनारायणपुरा। और वहां पर इतने सारे जब शिष्य हो गए रामानुजाचार्य के, तो उन्होंने सोचा कि मुझे थोड़ा समय यहां रहे कि उनको उपदेश करना चाहिए, क्योंकि ये अभी अभी वैष्णव बने हैं, तो उनको ज्यादा जानकारी नहीं है कि वैष्णव धर्म क्या है, तो उनको थोड़ा प्रशिक्षण देना चाहिए, उपदेश देना चाहिए। तो कई महीने वहां पर वो रहे। इस समय रामानुजाचार्य की उम्र थी 80, काफी वृद्ध हो गए थे, लेकिन फिर भी तंदुरुस्त थे, हृष्ट पुष्ट थे, शक्तिशाली थे। और एक दिन उन्होंने देखा वहां रहते रहते कि जो उनका तिलक होता है, जिसको तिरुमन कहते हैं उनकी भाषा में, जो सफेद रंग की मिट्टी होती है जिसे वो तिलक लगाते थे जगह के शरीर के 12 स्थान पर, जैसे हम लोग गोपी चंदन लगाते हैं, वो समाप्त होने को आया था। तो रामानुजाचार्य ने सोचा कि तिलक के बिना वैष्णव क्या है, कोई मतलब नहीं है, और अगर हमारे पास तिलक नहीं, मिट्टी नहीं रही यहां पर मेलकोटे में, तो क्या किया जाए। तो काफी चिंतित हो गए, इसका मतलब है कि वैष्णवों को हमेशा तिलक ग्रहण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है 12वें स्कंद में कि कलयुग में लोग सोचेंगे कि केवल स्नान करने से हम अभी अच्छी तरह से आभूषित हो गए, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि स्नान करना तो चाहिए, परंतु स्नान के बाद भी और कई चीजें महत्वपूर्ण होती है, उनमें से तिलक एक है। तिलक लगाने के बाद ही आदमी व्यवस्थित ढंग से वो सुसज्जित या आभूषित कहा जाता है, अन्यथा नहीं। तो रामानुजाचार्य बड़े चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए, कहां से मिट्टी लाया जाए। तो उस समय उनके मन में, उनके रात में सोते समय उनको स्वप्न आया, और स्वयं भगवान नारायण वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे कि हे रामानुज, चिंता नहीं करो, मैं यहां से नजदीक ही यादव गिरी नाम के स्थान में हूं, और वहां पर तुम चले आओ, और मैं वहां पर छुपा हुआ हूं, तो वहां पे मुझे निकालो और मेरी सेवा करो, और उसी जगह के पास में तुम ये तिरुमन की मिट्टी या तिलक की मिट्टी भी पाओगे, चिंता नहीं करो, तुरंत निकल पड़ो। तो रामानुजाचार्य नींद से जागे और बहुत आनंद उनको हुआ, तुरंत जाकर अपने शिष्यों को जगाया, और संदेश राजा विष्णुवर्धन राय को भी भेजा गया। वो भी कई आदमियों को लेकर आए, बड़े उत्तेजित अवस्था में सभी लोग जंगली में झाड़ियों को काटते काटते उस दिशा में चलते गए जहां रामानुजाचार्य इशारा कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने स्वप्न में देखा था। और आगे चलते चलते आगे चल रहे थे, फिर यादवगिरी के नीचे पहुंचे, और यादवगिरी मतलब यादव नाम का जो पर्वत है वहां चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते वेद पुष्करणी नाम के जगह में आए, और वहां पे एक विशाल पत्थर था जिसको परिधान शिला कहते थे। ये परिधान शिला वही पत्थर है जहां पर प्राचीन काल में दत्तात्रेय ने संन्यास वेश धारण किया था। तो इसी स्थान पर भी रामानुजाचार्य ने पुनः अपने ग्यारहवें सन्यासी के वस्त्र धारण कर लिए। आपको याद होगा कि जब चोल राजा के दरबार से बुलावा आया था तो कुरेश ने अपने गृहस्थ सफेद कपड़े रामानुजाचार्य को दिए थे और रामानुजाचार्य जंगल की ओर निकल पड़े थे और रामानुज के सन्यास कपड़े ग्यारहवें वस्त्र वो कुरेश पहन के आए थे। तो इतने समय के बाद अब फिर से रामानुजाचार्य ने वही ग्यारहवें वस्त्र धारण कर लिए, सन्यासी के वस्त्र, और फिर आगे चलते गए और फिर आखिर में वहां पर यादवद्र के ऊपर जब पहुंचे, लेकिन फिर भी उस दिन भगवान नारायण को ढूंढ नहीं पाए। और उस रात जब रामानुजाचार्य सोच रहे थे कि इतना घना जंगल है, इतना विशाल स्थान है, यहां पर भगवान नारायण मिलेंगे कहां, ऐसी चिंता में वो विश्राम करने लगे। रात को जब नींद आई तो दोबारा उनको स्वप्न आया और उस स्वप्न में वही भगवान श्री नारायण ने उनको विस्तार में मार्गदर्शन किया, कहा कि देखो सीधे इस जगह जाओ और मैं एक वाल्मीकि के भीतर हूं। ये वाल्मीकि के ऊपर बहुत सारे तुलसी है, तुलसी का पेड़ भी लगा हुआ है वहां पर, और रास्ते में यहां से जब जो रास्ता वहां तक जाएगा उस रास्ते में भी तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं, तो तुम मार्ग ढूंढ निकाल पाओगे। और एक चंपक वृक्ष और एक बकुल वृक्ष के बीच में है ये वाल्मीकि, और इसके दक्षिण पश्चिम भाग में एक कुंड है, कल्याणी कुंड। तो इस कुंड के उत्तरी पूर्व भाग में ये सफेद मिट्टी मिलेगी जिसका उपयोग तुम तिरुमन के रूप में कर सकते हो, तो तुरंत निकल पड़ो वहां पर। तो रामानुजाचार्य बड़े खुश हुए, नींद से जागे, तुरंत अपने शिष्यों को और अन्य राजा और अन्य उनके सिपाहियों को लेकर आगे चल पड़े और उन झाड़ियों को काटते काटते ठीक उसी स्थान तक पहुंचे जहां उनको मार्गदर्शन मिला था रात में। और जब वो आए वहां उन्होंने वाल्मीकि देखा और वाल्मीकि के अंदर नारायण भगवान की मूर्ति थी, बहुत सुंदर मूर्ति। उनको उनकी खुशी की सीमा नहीं रही, सारे भक्त और जो भी वहां लोग आए थे, यहां तक कि राजा विष्णुवर्धन भी, सब लोग जोर जोर से कीर्तन करने लगे, हर्षोल्लास से जोर जोर से तालियां मार रहे थे, तो कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। वहां तो एक बड़ा उत्सव ही तुरंत शुरू हो गया एक क्षण में जैसे उनको वो मूर्ति मिल गई। और यहां राजा के जितने भी सारे लोग सैनिक आए थे वो अपने वाद्य सब बजाने लगे, वहां बड़ी धूमधाम मची, जोरदार वहां पर उत्सव वहां मनाया गया उसी क्षण। और वहां के लोग जब उस गांव के लोग वहां पर आए और उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे गुरुजनों से, बुजुर्गों से हमने सुना था कि वो जब छोटे थे तो यहां पर यवनों ने, मुसलमानों ने आक्रमण किया था और उस समय यहां भगवान विराजे थे, उनका नाम था यादवाद्रिपति, क्योंकि इस जगह का नाम था यादवगिरी, गिरी मतलब पर्वत, यादवगिरी या यादवाद्रि, तो पति मतलब वहां के स्वामी भगवान नारायण, वहां यहां पहले मंदिर हुआ करता था हमने ऐसे सुना है, और यादवाद्रिपति यहां पर निवास करते थे। लेकिन जब इन मुसलमानों ने आक्रमण किया तो वहां जो पुजारी वगैरह रहा करते थे वो यादवाद्रिपति की सुरक्षा के लिए और अपनी जान को भी बचाने के लिए यादवाद्रिपति को कहीं जंगल में छुपा के वो वहां से भाग गए। इसके बाद हमें पता नहीं था कि यादवाद्रिपति कहां है, लेकिन आज आपकी मतलब रामानुजाचार्य की भक्ति के बल पर यादवाद्रिपति हम सबके सामने बाहर प्रकट हुए हैं। तो उस समय अभिषेक हुआ डीटी भगवान के, अर्चा विग्रह जो बहुत सुंदर विग्रह था उनको नहलाया धुलाया गया और फिर अभिषेक कराया गया, और वहां जो कुंड था कल्याणी कुंड वहां से जल लाकर उनको और भी अभिषेक कराया गया। वहां स्वयं रामानुजाचार्य 3 दिन रहे, उन्होंने स्वयं अर्चा विग्रह की पूजा की, अर्चना की, और फिर उन्होंने नियम बनाए किस तरह से यहां अर्चा विग्रह की सेवा होनी चाहिए। और वहां पर एक कुटिया बनाई गई थोड़े समय के लिए, और फिर वहां सारे गांव के लोग और रामानुजाचार्य के शिष्य मिलकर सुंदर मंदिर बनाना उन्होंने आरंभ किया। विष्णुवर्धन बड़े खुश हो गए, उनके सैनिक भी साथ में आए। यादवाद्री उस पर्वत के ऊपर काफी बड़ी जगह थी, तो जितने भी झाड़ी जंगल वहां थे वो सब काट दिए गए, और फिर वहां कई घर बनाए गए, सड़क बनाए गए, यहां तक कि एक सारा शहर का शहर वहां पर नया बनाया गया। और फिर यादवाद्रिपति या नारायण भगवान के लिए एक साल के अंदर सारे भक्तों ने, जो कि रामानुजाचार्य के साथ आए थे, उस गांव के नीचे जो गांव था वहां के निवासी, विष्णुवर्धन के सैनिक, इन्होंने एक साल में एक सुंदर मंदिर खड़ा कर दिया। और वहां पर अन्य उत्सव मनाने के लिए पूजा अर्चा की व्यवस्था, मार्गदर्शन रामानुजाचार्य वहां करते थे, तो उन्होंने व्यवस्था कर ली। और जैसे सेवा चलती थी, एक दिन हुआ ये कि एक स्वप्न आया और रामानुजाचार्य को तीसरी बार, और स्वप्न में भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि रामानुज, अभी यादवाद्रिपति या मेरी पूजा तो हो गई, बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा मंदिर बना लिया मेरे लिए, यहाँ उत्सव और अर्चा पूजा के लिए तुमने भी मार्गदर्शन दिया है, विधि विधान बना दिए हैं, और लोग भी मेरी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, ये सब ठीक है, परंतु एक अभाव है, एक चीज की कमी है, मेरा उत्सव विग्रह नहीं है। आप तो जानते हैं कि हर मंदिर में जहां बड़े विग्रह होते हैं उनके साथ साथ उनके छोटे विग्रह भी होते हैं, जिनको उत्सव मूर्ति, उत्सव विग्रह या विजय विग्रह कहते हैं। जब भी शोभा यात्रा निकलती है तो वो छोटे विग्रह लिए जाते हैं बाहर पालकी में। आपने देखा होगा कि यहां दक्षिण भारत में खास करके ये बहुत प्रचलित है, और प्राय हर रोज, या हर रोज नहीं तो खास उत्सव के दिन ये उत्सव मूर्ति निकलती है और सबको दर्शन देने जाती है। तो भगवान ने रामानुजाचार्य से कहा कि यहां आकर तो लोग दर्शन ले रहे हैं, लेकिन मैं भी बाहर जाना चाहता हूं, मुझे तुम केवल अंदर रख रहे हो, मैं भी बाहर जाना चाहता हूं, तो ये उत्सव मूर्ति की कमी है। तो उत्सव मूर्ति का नाम है राम प्रिय, ये मेरी उत्सव मूर्ति है, और इस समय ये मूर्ति दिल्ली के मुसलमान सुल्तान के पास में है, तो तुरंत वहां जाओ रामानुज और मेरे उत्सव मूर्ति राम प्रिय को लेकर आओ। अब वास्तव में राम प्रिय इनका इतिहास है। ये राम प्रिय नाम ऐसे क्यों रखा गया, क्योंकि भगवान राम के बड़े प्रिय थे वो, भगवान नारायण की मूर्ति, लेकिन श्री रामचंद्र स्वयं इनकी उपासना किया करते थे, और उन्होंने अपने पुत्र कुश को ये मूर्ति प्रदान कर दी, भेंट दी। और इस तरह से चलते 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 ये भगवान कृष्ण के पास दहेज के रूप में आ गई द्वारका में, सोमवंश से चंद्रवंश में आ गई, और भगवान श्री कृष्ण भी इनकी पूजा करते थे, वो उनकी पूजनी वो मूर्ति थी। और फिर धीरे 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 से यहां तक अभी किसी न किसी तरह से वो दिल्ली पहुंच गई थी। अब तो जानते हैं कि यवन राजा जब आक्रमण करते थे तो वहां बहुत कुछ तहस नहस कर देते थे, वहां की जो भी धन संपत्ति था वो लूट के अपने यहां ले जाते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, और वहां के उत्सव, वहां की मूर्तियों को भी उठाकर ले जाते थे। तो खैर, किसी न किसी तरह से रामप्रिय पहुंच गए दिल्ली सुल्तान के पास। उस समय मुसलमानों ने आक्रमण किया ही हुआ था, ज्यादा समय नहीं हुआ था, केवल 100 साल से ज्यादा नहीं बीते जबकि मुसलमानों का राज शुरू हुआ था भारत में। तो फिर रामानुजाचार्य, हालांकि उनकी आयु 80 साल से ज्यादा थी, फिर भी वो हिचकिचाए नहीं कि अरे मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं, अभी कैसे जाऊंगा इतनी दूर दिल्ली, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेलकोट मैसूर कहां है और दिल्ली कहां है। आजकल हम बेंगलोर राजधानी में बैठेंगे फिर भी कितना समय लगता है जाने के लिए, 30-40 घंटे तो लगते होंगे। तो लेकिन उन्होंने अपने सुविधा या असुविधा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और अपने थोड़े गिने चुने शिष्यों के साथ में निकल पड़े। लगातार 2 महीने चलते चलते तेजी से चलते गए और वहां पे दिल्ली में आकर पहुंच गए। दिल्ली में सीधे सुल्तान के पास गए। सुल्तान के पास जब आप पहुंचे तो उन्होंने सुल्तान को बताया कि हम ऐसे ऐसे दक्षिण भारत से आए हैं और हमें स्वप्न में ऐसे रामप्रिय आए हैं, वो हम उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो कृपया रामप्रिय को लौटा दीजिए हमें। तो सुल्तान प्रभावित हुए रामानुजाचार्य के भक्ति को देखकर, उनके विद्वत्ता को देखकर, और समझ गए कि ये कोई विशेष व्यक्ति है, कोई महान आचार्य है, संत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे दरबार में आओ, जहां खास करके मैंने जितना भी मैंने धन लूटा हुआ है जगह जगह से, वो सब रखा हुआ है। वो और किसी को वहां उस कमरे में प्रवेश करने नहीं देते थे, लेकिन रामानुजाचार्य को अंदर ले गए। वहां उन्होंने देखा बहुत तरह तरह का धन वहां पर पड़ा हुआ था, साथ साथ कई मूर्तियां थी अलग अलग मंदिरों से जो लाए थे, मंदिर तोड़कर मूर्तियां यहां पर ले आए थे। तो रामानुजाचार्य ने वहां देखा, लेकिन वहां रामप्रिय थे नहीं, तो उदास हो गए, फिर लौट के चले आए। रात को जब सो रहे थे तो चौथी बार भगवान स्वप्न में आए रामानुजाचार्य के, और कहने लगे कि रामानुज निराश नहीं होना, मैं सुल्तान के पुत्री के पास हूं, वो मेरी पूजा करती है और वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरी सेवा करती है और मेरे बिना वो रह नहीं सकती है। तो फिर रामानुजाचार्य गए सुल्तान के पास, कहने लगे मुझे ऐसा स्वप्न आया और रामप्रिय आपके पुत्री के पास है, वो उनके साथ खेल रही है, उनकी सेवा कर रही है। तो राजा को आश्चर्य हुआ, तो कहने ठीक है जाके देखते हैं। तो गए, उस पुत्री का नाम था बीबी लक्ष्मीमार, और वहां जब गए तो उन्होंने देखा कि बीबी लक्ष्मीमार वो खेल रही थी रामप्रिय के साथ, भगवान की उत्सव मूर्ति के साथ, कन्या थी वो। और जब रामानुज अंदर आए तो जो घटना हुई उसके बारे में 2 अलग अलग वर्णन हैं, हम दोनों वर्णनों को आपको बोलेंगे। एक वर्णन में ऐसे बताया जाता है कि जैसे रामानुजाचार्य अंदर गए, उन्होंने तुरंत रामप्रिय को पहचान लिया और दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके राजा सुल्तान से अनुमति ली और रामप्रिय को लेकर वो वापस चले गए, जल्दी जल्दी निकल गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बीबी लक्ष्मीमार या राजकन्या वो कहने लगेगी पिताजी से कि मुझे ये वापस चाहिए, तो अपने पुत्री के स्नेह में शायद वो सैनिक भेज सकते हैं हमारे पीछे। इसलिए रामानुज जल्दी से निकल पड़े अपने शिष्यों के साथ, जितना तेज हो सके उतना चलते 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 यादवाद्री की ओर चलते गए। दूसरा वर्णन ऐसे है, ये बड़ा आश्चर्य का वर्णन है, कि जैसे रामानुजाचार्य उस कमरे के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि रामप्रिय है, पहचान लिया और जोर से रामप्रिय का नाम पुकारा। और उस समय रामप्रिय जो कि बीबी लक्ष्मीमार के पास वहां थे और एक आसन पे थे, तुरंत वहां से छलांग मारकर नीचे आके आ गए और रामानुजाचार्य की ओर चलते आए। फिर रामानुजाचार्य ने आलिंगन किया उनको। रामानुजाचार्य का इस मूर्ति के प्रति पिता का भाव था। रामानुजाचार्य ने इस मूर्ति को अपना लड़का या अपना बच्चा सोचा, लेकिन बीबी लक्ष्मीमार जो है वो रामप्रिय को अपने पति समझती थी, जैसे मीराबाई की तरह की वो भक्त थी। तो ये दृश्य देखा, भौचक्के हो गए, हक्का बक्का हो गया वो सुल्तान, अरे ये क्या है, क्योंकि वो लोग तो कोई मूर्ति वगैरह में मानते हैं नहीं, और ये अचानक देखते हैं कि मूर्ति है, छलांग मार के आ गई, वो तो पागल ही हो गए, ये सब क्या है। फिर जान पाए कि ये रामानुजाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो फिर बहुत सारा धन दिया उनको, कहा कि ठीक है आप ले जाइए इनको। तो उस समय जब बीबी लक्ष्मीमार को पता चला कि मेरे पिताजी अभी ये मूर्ति को दे रहे हैं जो मेरे लिए प्राण धन है, तो बहुत रोई। और पिताजी सुल्तान ने कहा कि अरे बेटी जाने दो, उनका भगवान है, उनके साथ में जाने दो। तो कहा नहीं, मेरे भी भगवान है, तो मेरे भगवान के साथ मुझे भी भेज दो, दहेज में दे दो, मुझे भी उनके हवाले शादी करके मुझे भेज दो। तो सुल्तान तैयार हो गए और रामानुजाचार्य के पास आकर कहे कि देखिए महात्मा जी, मेरी पत्नी आप ले जाइए रामप्रिया के साथ, अब ये इनकी पत्नी है और आप इनके पिता हैं, तो आप इसको संभाल के ले जाइए, मैं बहुत सारा दहेज भी देता हूं। तो बहुत सारा दहेज दिया सुल्तान ने और फिर बीबी लक्ष्मीमार रामानुज और अन्य रामप्रिय के साथ सारे भक्त भी यादवगिरी की ओर आए। तो पहले वर्णन में फिर से चले आते हैं, ये दूसरा वर्णन हुआ कि रामानुजाचार्य के पास 6-7 में यादवगिरी आकर पहुंच गए। लेकिन पहले वर्णन में हुआ ये कि जब रामानुजाचार्य रामप्रिय को अपने शिष्यों के साथ में लेकर जल्दी से तेजी से चलते चलते गए थे, तो जब बीबी लक्ष्मीमार को पता चला कि ये क्या हुआ है, तो उनको बहुत दुख हुआ, बहुत रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। राजा सोच ले गए क्या है, कोई पुतली गई है तो क्या हुआ, इतने सारे पुतलियां हैं, वो पुतली नहीं है। तो फिर वो उनके उसके पेट में भोजन नहीं जाता था, नींद नहीं आती थी, दिन ब दिन बहुत कमजोर होती गई। और फिर राजा ने जब देखा तो कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं उस मूर्ति को फिर से लाता हूं। तो फिर उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जल्दी से जाओ, वो कहीं बहुत आगे पहुंच गए होंगे, इनका पीछा करो और उनसे निवेदन करो कि वो रामप्रिय को वापस करें, और अगर तैयार नहीं है तो जबरदस्ती लेकर आओ मूर्ति, कुछ भी करो लेकिन मूर्ति लेकर आओ। तो बीबी लक्ष्मीमार ने बहुत निवेदन किया अपने पिताजी से कि मैं भी सैनिकों के साथ में जाना चाहती हूं। तो पिताजी तैयार हो गए, पालकी वगैरह सब तैयार हो गई और उस छोटी सी सेना के आगे बीबी लक्ष्मीमार भी चली। और चलते 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 वो ढूंढ नहीं पाए उनको, क्योंकि रामानुजाचार्य उनके शिष्य अब काफी आगे पहुंच गए थे और राज को पार करके भी गए थे जो सुल्तान का राज्य था। जब सुल्तान के राज्य की सीमा तक पहुंचे बीबी लक्ष्मीमार अन्य सैनिक और अभी तक उनको रामानुजाचार्य की पार्टी दिखाई नहीं पड़ी थी, तो सभी लोग निराश हो गए। रात को वहां जंगल में रुके सोने के लिए और जब बाकी सब लोग सो रहे थे तो बीबी लक्ष्मीमार वो तो चाहती थी कि मैं किसी न किसी तरह से रामप्रिय को के साथ में जाऊंगी। अब सैनिक आगे नहीं जा पाए क्योंकि अभी राज की सीमा खत्म हो गई थी, तो वो अकेली उठ पड़ी बीच रात में जब सब लोग सोए थे और जंगल में भाग गई, क्योंकि वो रामप्रिया को के पीछे जाना चाहती थी। अब जब वो दिल्ली से बाहर निकले थे तो इन सैनिकों के पार्टी में एक युवक भी था जिसका नाम था कुवेर। बीबी लक्ष्मीमार की तरह यह भी एक मुसलमान था, वो बीबी लक्ष्मीमार से विवाह करना चाहता था, लेकिन वो तो सुल्तान की पुत्री थी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मैं इस बार साथ में जाऊंगा, बीबी लक्ष्मीमार का संग तो मिलेगा मुझे और हो सकता है कहीं वो मेरी ओर अच्छी तरह से देखे तो विवाह की संभावना है, तो वो भी साथ में गया। तो कुवेर ने जब देखा कि अकेले, उन्होंने समझ लिया कि बीबी लक्ष्मीमार उठ के भाग गई है, तो वो भी उनके पीछे पीछे भाग गए और फिर एक सेवक की तरह वो बीबी लक्ष्मीमार के साथ में रहे। जंगल में आप तो जानते हैं कि बहुत कठिन यात्रा होती है, वहां आगे चलते चलते सोने का ठिकाना नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, लेकिन कुवेर ने बहुत परिश्रम करके ये प्रयास किया कि बीबी लक्ष्मीमार को कोई कठिनाई नहीं हो। जगह जगह से उनको फल जड़ी बूटियां निकाल के लाते थे ताकि वो अच्छी तरह से खाए पिए, सोने की व्यवस्था करते थे। ऐसे काफी समय चलते चलते फिर वो आगे निकल पड़े। जब आगे आए फिर अंततः वो यादवगिरी यादवाद्री पहुंचे और पहुंचकर उस समय अंदर से बीबी लक्ष्मीमार को बहुत तीव्र प्रेरणा हुई कि यहीं पर रामप्रिय हैं, अवश्य यहां पर हैं। अभी बीबी लक्ष्मीमार के मन में रामप्रिय के प्रति शुद्ध भक्ति थी, कोई पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से वो रामप्रिया के बिना नहीं रह सकती थी और अपने मन में उन्होंने रामप्रिय को अपना पति मान लिया था और वो कहते थे कि पति पत्नी का स्थान पति के साथ है। तो जब वो यादवगिरी में पहुंची तो सारे वैष्णवों से नम्रता से प्रणाम करके दंडवत कर करके वो निवेदन करती थी कि किसी न किसी तरह मुझे रामप्रिय दिखाइए, मैं रामप्रिय के बिना रह नहीं सकती हूं। तो खबर रामानुजाचार्य तक पहुंच गई। अब रामानुजाचार्य काफी पहले ही यादवाद्री पहुंच गए थे और यादवाद्री पति के मंदिर में रामप्रिय को उन्होंने स्थापित किया था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी, लेकिन छुपकर एक ऐसे जगह में मंदिर में जहां कमरे में किसी को पता नहीं चला, केवल रामानुजाचार्य और उनके थोड़े निकट के थोड़े जो शिष्य थे उन्हीं को मालूम था कि रामप्रिय आए हैं और रामप्रिय की सेवा हो रही है इस मंदिर में। क्योंकि रामानुजाचार्य को डर था कि कहीं वो सुल्तान के सैनिक आ जाएं तो फिर से कहीं वही दुर्घटना न हो जो कि कई साल पहले हुआ था। तो जब रामानुजाचार्य ने देखा बीबी लक्ष्मीमार को, वो समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो शुद्ध भक्त है। मुसलमान हो तो क्या, लेकिन शुद्ध भक्त है। तो फिर उसने बीबी लक्ष्मीमार को लिया अंदर और दर्शन कराया, और इस तरह से बीबी लक्ष्मीमार वहीं पर रही यादवाद्री में, यादवाद्री पति और रामप्रिय की सेवा करती रही। और बड़े प्रेम से भक्ति भाव से वो दिन भर उनका गुणगान करती, उनके बारे में भजन करती, अलग अलग तरह से सेवा करती रामप्रिय की, यादवाद्री पति की। और इस तरह से बड़े तपस्या का जीवन बिताया, भक्ति का जीवन बिताया बीबी लक्ष्मीमार ने। और फिर कई साल, थोड़े साल बाद वही यादवाद्री में बीबी लक्ष्मीमार ने अपना प्राण त्याग दिया और वो वैकुंठ वापस चली गई। शुद्ध भक्त थी वो। और आज भी दक्षिण भारत के कई श्री वैष्णव मंदिरों में बीबी लक्ष्मीमार का नाम आप पढ़ सकेंगे। बीबी लक्ष्मीमार काफी प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में श्री वैष्णव मंदिरों में। और बीबी लक्ष्मीमार और रामप्रिया, इनका संबंध भी बड़ा सुनने लायक है, क्योंकि पति पत्नी थे, भगवान और भक्त। अब जब रामानुजाचार्य रामप्रिय को दिल्ली से लेकर आए थे तो उनका भाव रामप्रिय के प्रति एक पिता का था पुत्र के प्रति, इसलिए उन्होंने तमिल में उनका नाम रखा सेल्व पिल्लई, बच्चा लड़का, लेकिन संस्कृत में उनका नाम रहा संपत कुमार। और आज भी यादवाद्री में ये उत्सव मूर्ति संपत कुमार से नाम से जानी जाती है। तो संपत कुमार और बीबी लक्ष्मीमार का विवाह हुआ, मतलब अनुष्ठान तो नहीं हुआ लेकिन पति पत्नी ऐसा सब मानते थे, क्योंकि वो यादव अब रामप्रिय को, संपत कुमार को अपने पति मानती थी। तो आप तो जानते हैं कि वैदिक संस्कृति में एक प्रथा है कि जब विवाह होता है तो दोनों के वंशावली पढ़ी जाती है। जैसे रामायण में आपने सुना होगा जब प्रभु रामचंद्र पहुंचे मिथिला और स्वयंवर में जीत गए और सीता देवी का हाथ विवाह में स्वीकार करने वाले थे, तो दशरथ महाराज की ओर से वशिष्ठ मुनि ने या विश्वामित्र मुनि ने दशरथ महाराज की वंशावली का वर्णन किया और शतानंद ने, ऋषि ने, जनक महाराज की ओर से उनके वंशावली का वर्णन किया कि मेरे उन पहले पहले ये राजा हुआ करते थे मनु ब्रह्मा जी से शुरू करते थे, ब्रह्मा जी से फिर मनु से ये राजा, ये वंश करते 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 सारी वंशावली का वर्णन करते करते आते, तो गोत्र कौन सा गोत्र है, क्या है। तो अब ये जो पति पत्नी की जोड़ी है बड़ी अद्भुत थी। पति है भगवान और पत्नी है एक मुसलमान, ये कैसी जोड़ी, इनका गोत्र क्या किया जाए। तो अभी संपत कुमार के पिता कौन थे, रामानुजाचार्य हो गए, रामानुजाचार्य के गोत्र था हरित गोत्र, तो फिर संपत कुमार का गोत्र हुआ हरित गोत्र। अब रही बात बीबी लक्ष्मीमार की, उसका कौन सा गोत्र होना है, वो तो यवनी थी। जो वैदिक संस्कृति में जो वर्णाश्रम में नहीं बैठते हैं उनको म्लेच्छ और यवन कहते हैं। यवन जो है वो खास करके ग्रीस देश से आए, ग्रीस देश से आकर फिर सेटल हुए। तो बताया जाता है कि गार्ग्य ऋषि, ये इनसे सब यवन जाति शुरू हुई, इनके पुत्र थे काल यवन और फिर इनसे ये सब लोग शुरू हुए, इसलिए फिर बीबी लक्ष्मीमार का गोत्र बताया गया गार्ग्य गोत्र। इस तरह से दोनों पति पत्नी रहे वहां, पत्नी पति की सेवा करती रही, गुणगान करती रही, अंत में वैकुंठ वापस चली गई। उधर कुबेर जो कि उनके साथ में सेवक की तरह रहने लगे थे, बीबी लक्ष्मीमान की सेवा करते करते जब बीबी लक्ष्मीमान ने प्राण त्याग दिया तो उनको भी बहुत दुख हो गया और सोचे कि यहां रहकर मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा, तो वो चले गए श्रीरंगम। वो भी मुसलमान था और वहां जाकर श्री रंगनाथ जी का शरण लिया। अब रंगनाथ जी के मंदिर में वो प्रवेश नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मुसलमान थे, मुसलमानों को वहां प्रवेश नहीं था, तो बाहर ही बैठकर वो भजन गाया करते थे दिन भर रात भर। और रंगनाथ जी वहां बड़े प्रभावित हुए उनसे, और इस तरह से गाते गाते वो केवल भिक्षा पे जीते थे। जो भी आने वाले लोग तीर्थ यात्री हुआ करते थे, जो भी भिक्षा देते थे वो लेते थे, खाते थे और अपने जीवन की परिस्थिति को भगवान की कृपा के रूप में मानते थे। एक बार जब वो रंगनाथ जी के ऊपर ध्यान करते हुए बैठे थे तो एक आवाज उनको आई, आवाज रंगनाथ जी की थी। रंगनाथ जी ने कहा कि तुम मेरा दर्शन करने के लिए अंदर नहीं आ पा रहे हो, तो मैं मेरी पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम जगन्नाथपुरी में चले जाओ, वहां मैं जगन्नाथ जी के रूप में निवास करता हूं और मैं सबके ऊपर कृपा बरसाता हूं। जगन्नाथपुरी चले गए और उन्होंने रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी का भगवान का दर्शन हृदय से कर लिया और वहीं पर अपने प्राण त्यागने के समय तक जगन्नाथपुरी में रहकर जगन्नाथ जी का भगवान कृष्ण का गुणगान करते करते रहे। और जब उनके प्राण त्यागने का समय आया तो वो भी भगवान का स्मरण करते हुए, भजन करते हुए वो वैकुंठ वापस चले गए। तो हम देखते हैं कि इन लीलाओं में दो मुसलमान शुद्ध भक्त बन गए, वैष्णव बन गए, तो कितनी सुंदर बात है ये। इसका मतलब है कि भक्ति मार्ग में कोई सीमा नहीं है, ये जाति भेद, इसलिए वैष्णवों में कभी ऐसे जाति भेद नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी कभी कभी ये पुरानी जो दृष्टि होती है ये छूटना बहुत मुश्किल होता है भक्तों में भी, और भक्त लोग भी बहुत कुछ देखते हैं, ये जाति कौन सी है, ये ऊपर जाति नीचे जाति। भक्तों में विवाह के समय भी काफी यश चलता है कि हमारी जाति के होने चाहिए, ऊपर की जाति के, नीचे की जाति के, लेकिन वैष्णवों में ऐसे कोई विचार नहीं होने चाहिए। बल्कि अगर कोई भक्त है, कोई अच्छा भक्त है, तो फिर वही देखना चाहिए। जाति भेद करना वैष्णवों के बारे में ये उचित नहीं है, बल्कि ये एक अपराध जैसा हो जाता है। मतलब हम वैष्णवों को भौतिक दृष्टि से देखते हैं जो कि सही नहीं है। तो इन सुंदर लीलाओं से, इन दो महान भक्तों के उदाहरण से हम जान सकते हैं कि भक्ति के लिए कोई बंधन, जाति धर्म कुछ बंधन नहीं। अगर मुसलमान लोग इस तरह से शुद्ध भक्ति कर सकते हैं तो फिर अन्य लोगों की बात तो क्या है, कोई भी भक्ति कर सकता है। तो इस तरह से यादवाद्री का नाम मेलकोटे, ये तिरुनारायणपुरम हुआ। आज मेलकोटे आपने शहर का नाम सुना होगा ना, मेलकोटे मैसूर के पास में है, श्री वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ये मेलकोटे। वहां कई महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं श्री वैष्णव संप्रदाय के। तो वहां पर संपत कुमार की सेवा चलती है और यादवाद्री पति की सेवा चलती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सत्युग में यही स्थान का नाम था नारायणाद्री, त्रेता युग में इसका नाम हो गया वेदाद्री, द्वापर युग में यादवगिरी या यादवाद्री, और कलयुग में यतिशैल। यतिशैल मतलब यति, यतिराज, ये रामानुजाचार्य का और एक नाम है। यति मतलब सन्यासी, यतिराज मतलब सन्यासियों में से सर्वश्रेष्ठ। तो रामानुजाचार्य का और एक नाम है यतिराज। रामानुजाचार्य के कई नाम थे क्योंकि उनके इतने गुण थे कि इतने अलग 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 नाम उनके होते थे, तो उनका एक नाम था यतिराज। तो क्योंकि यतिराज ने इस स्थान को फिर से ढूंढा, उनकी भक्ति, उनकी शुद्धता की वजह से फिर से ये धाम प्रकट हुआ, इसलिए मेलकोटे का नाम आज यतिशैल भी है। तो ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, कभी हो सके तो तीर्थ यात्रा के लिए वह हम सब जा सकते हैं। तो रामानुजाचार्य वहां उस स्थान में यादवाद्री में 12 साल रहे मेलकोटे में।
और वहां पर रोज उपदेश दिया करते थे, भजन किया करते थे। अब आपको याद होगा कि कुरेश और महापूर्ण की आंखें निकाल दी गई थी और वो तो अपने रास्ते आगे चोल राजा के पास चले गए थे, रामानुजाचार्य अपने रास्ते में चले गए थे। तो इतने सालों में रामानुजाचार्य को खबर नहीं मिली थी कि इन दोनों का हुआ क्या। उस समय कोई टेलीफोन, टीवी और टेलेक्स और टेलीग्राम वगैरह तो नहीं हुआ करता था, तो फिर उनको खबर नहीं मिली थी। काफी चिंता में रहते थे कि क्या हुआ होगा कुरेश का, महापूर्ण मेरे गुरु का क्या हुआ होगा। उनके शिष्य और उनके गुरु दोनों गए थे। तो उस समय एक श्री वैष्णव वहां पर आए और श्री वैष्णव ने खबर दी कि हुआ ये कि जब कुरेश और महापूर्ण उस क्रूर चोल राज कुलुतुंग के दरबार में गए, तो उस समय राजा ने कहा कि शिव ही सबसे महान है, तो आपको शिवजी महान है ये स्वीकार करना होगा और यहाँ पे ये कागज है, कागज पे दस्तखत कर लो। शिवात परतरम न अस्ति, कि शिव से परे कोई नहीं है, इसमें दस्तखत कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो काफी शास्त्रों से, वेदों से, पुराण, उपनिषद इत्यादि उन्होंने प्रमाण रखे और जगह जगह से प्रमाण रखने के बाद भी, काफी समय तक बोलने के बाद भी, जब राजा संतुष्ट हुए नहीं, उन्होंने कहा कि आप तो बड़े चतुर हो, इधर का श्लोक उधर का श्लोक निकालकर आपके गलत सिद्धांत को सिद्ध करने का आप कोशिश का प्रयत्न कर रहे हो, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, ये कागज है और ये देखो शिवात परतरम न अस्ति, ये सही करो। तो उस समय ये सब वर्णन कर रहे हैं वो, श्री वैष्णव रामानुजाचार्य को वर्णन कर रहे हैं। तो फिर श्री वैष्णव ने कहा कि उस कागज में सही करने के बजाय कुरेश ने और एक वाक्य लिख दिया, द्रोणम अस्ति ततम परम। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे ना, द्रोण और शिव ये वजन के माप हैं। उस जमाने में कई वजन के माप हुआ करते थे, जैसे हमारे ग्राम है, किलोग्राम है, टन है, वैसे द्रोण और शिव भी वजन के माप थे और इनमें से शिव एक कम वजन का माप है और द्रोण ज्यादा। तो ये कुरेश ने जानबूझकर शिव का अलग अर्थ लगाकर ऐसा कहा, शिवजी आप बोल रहे हो कि शिवजी से ज्यादा कोई नहीं है, अरे और क्या, द्रोण भी शिवजी से ज्यादा है। तो उन्होंने लिखा द्रोणम अस्थि ततः परम। तो जब ऐसा कहा कुरेश ने, तो चोल राज कुलुतुंग की आंखें लाल लाल गुस्से से हो गई और फिर उन्होंने बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उन्होंने आदेश दिया कि इस व्यक्ति की आंखें निकाल दो। इसके बारे में भी दो वर्णन है, एक वर्णन ये है कि राजा के सैनिकों ने उनकी आंखें निकाल दी, दूसरा वर्णन है कि कुरेश ने कहा कि आप इसके लिए कष्ट क्यों करते हो, आपके लोगों के, आपके हाथ मेरे आंखों पर लगे, मैं नहीं चाहता। तो खुद उस समय कुरेश ने अपने आंखें निकाल दी और उस भयानक दृश्य को सबने देखा, सब लोग उसको सहन नहीं कर पाए वहां पर और बहुत सारा खून बह रहा था, आंखें अपने दोनों आंखें। और फिर राजा ने महापूर्ण से पूछा कि अभी करोगे कि नहीं, तो महापूर्ण ने भी कहा कि सकता, उन्होंने भी शास्त्रों से कई प्रमाण रखे कि विष्णु ही परम है, विष्णु के भक्त परम है, शिव जी और ब्रह्मा जी ये तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के पुत्र समान हैं, इसलिए ये परम नहीं हो सकते। तो राजा को और गुस्सा आया, उन्होंने अपने सैनिकों से कहा इनकी भी आंखें निकाल दो। तो महापूर्ण की भी आंखें निकाल दी गईं और सब खून खून खून, आप तो कल्पना कर सकते हैं, वर्णन करने इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल कल्पना किया जा सकता है कि भक्तों की आंखें जब निकाली जाती हैं किसी के व्यक्ति के, कितना दर्द होता होगा और कितना खून बहा होगा। तो इस तरह से राजा ने कहा दोनों को यहां से भगा दो, अभी बाहर ले जाओ। तो उस समय महापूर्ण काफी वृद्ध थे और कुरेश उम्र में और काफी कम थे, लेकिन दोनों आगे बाहर निकाले गए और वहां पर महापूर्ण की जो पुत्री थी अतुलई, अतुलई के बारे में हम एकादशी के दिन चर्चा कर रहे थे, आपको याद है अतुलई के बारे में क्या चर्चा की थी? अतुलई के घर में सास बहू की समस्या हो गई, तो उसके सास ने, अतुलय के सास ने उनको कुछ टोका, वो सहन नहीं कर पाए, अपने पिताजी के घर में चली आई। सास ने टोका कि तुम यहां चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ वो काम करने के लिए आऊं, जैसे कि तुम्हारे पिताजी ने दहेज में बहुत सारे नौकरानियां भेजी हैं। तो ये अपमान सहन नहीं कर पाई अतुलय, अपने पिता के घर में चली आई। महापुण्य का मैं तो इन चीजों के बारे में नहीं जानता, रामानुजाचार्य के पास जाके पूछ लो। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ठीक है, तुम्हें किसी नौकर की जरूरत है ना। तो उस समय उन्होंने देखा कि दाशरथी, जो कि उनका भांजा भी था लेकिन शिष्य भी, बहुत बड़ा पंडित था दाशरथी। दाशरथी और कुरुश, जैसे आपको याद है, ये दो पहले शिष्य थे रामानुजाचार्य के। लेकिन रामानुजाचार्य ने देखा कि दाशरथी के मन में थोड़ा घमंड आ गया है, तो उन्होंने दाशरथी को कहा कि आप जाओ इनके घर में रसोई बनाओ। तो उस समय दाशरथी अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए अतुलय के घर में गए और वहां एक रसोईया के रूप में रहे, एक साधारण सेवक नौकर की तरह रहे और रसोई करते रहे। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पंडित, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये दाशरथी है। और फिर एक दिन वहां उस गांव में एक कोई पंडित आए, वो कोई व्याख्या कर रहे थे, उसमें कोई गलती की, तो फिर दाशरथी इसको सहन नहीं कर पाए, उन्होंने गलती को सुधारा और उसके ऊपर सही व्याख्या दे दी। तो वो जो व्याख्यान कर रहा था वो व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि तुम्हारी कला दिखानी है तो रसोई घर में जाके दिखाओ, यहां पे पंडितों के बीच में आकर क्यों क्या करते हो। तब उन्होंने और जब बात शुरू किया तब लोगों को पता चला कि ये महान पंडित दाशरथी है। फिर सभी लोग रामानुजाचार्य के पास गए, उनसे प्रार्थना करने लगे कि अभी तो दाशरथी इतने नम्र हो गए हैं कि ये इतने बड़े पंडित तब और आगे चल के ऐसी सेवा करें, ये उचित नहीं है। तब फिर रामानुजाचार्य ने दाशरथी को फिर से स्वीकार कर लिया था। तो खैर, यही अतुलय अब छुपके से महापूर्ण और कुरेश के पीछे पीछे आई थी। इन दोनों को पता नहीं था कि अतुलय उनके पीछे पीछे आई है। और फिर वो चले गए, जब उनको बाहर निकाला गया तो कोई उनका साथ नहीं दे रहा था, उनको दिखने में नहीं आता था, आंखें नहीं थी। और इतना दर्द आप अनुभव कर कल्पना कर सकते हैं कि आंखें निकाले जाने पर कितना दर्द हुआ होगा उनको। तो दोनों ऐसे भटकते भटकते चल रहे थे रास्ते में, और उस समय अतुलय वहां पर आई। अतुलय ने देखा कि क्या दशा हो गई है, उनको बहुत दुख हुआ, बहुत रोने लग गई। लेकिन फिर सोचा अभी रोने का समय नहीं है, अभी उनको सही हाथ से पकड़कर फिर वो कहीं ले गई शहर के बाहर। और वहां पर महापूर्ण कहने लगे कि अब मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि महापूर्ण काफी वृद्ध हो गए थे और आंखें निकाले जाने की वजह से जो शारीरिक वेदना हुई, अब उनके शरीर में वो ताकत नहीं थी इस वेदना को सहन करने के लिए अपने बुढ़ापे की वजह से। तो उन्होंने कहा कि कुरेश और अतुलय तुम लोग आगे चले जाओ वापस श्रीरंगम, अब मेरे में शक्ति नहीं रही आगे चलने के लिए, मैं यहीं पर लेट जाता हूं। और वहीं पर सड़क पर वो लेट गए। उन्होंने अपना सर जो है वो कुरेश के गोदी में रख दिया और अपने पैर, अपने चरण उन्होंने अतुलय के गोदी में रख दिया और अब कहने लगे कि अब मेरा प्राण त्यागने का समय हुआ। तो दोनों अतुलय और कुरेश काफी शोक करने लगे कि आप जैसे महान भक्त अब यहां बीच रास्ते में सड़क में, न इधर न उधर, न कोई तीर्थ स्थान में, आपकी मृत्यु ऐसी अवस्था में हो रही है, हमें कितना दुख हो रहा है। तो फिर उस समय महापूर्ण कहने लगे कि अरे क्यों शोक करते हो, क्या तुम नहीं जानते कि जहां भी भगवान का भक्त अपना प्राण त्यागता है अवश्य वहां भगवान उनके साथ में होता है। क्या तुम जटायु की कथा नहीं जानते, जटायु का ने प्राण त्याग कहां दिया, जंगल के बीच में, जंगल के बीच में कौन होता है, लेकिन वहां प्रभु रामचंद्र उनके पास में रहे। और इसके अलावा क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि शास्त्र में बताया है कि किसी व्यक्ति को प्राण त्यागने के लिए सबसे अच्छा जगह है या तो एक वैष्णव का घर या एक वैष्णव की गोदी। तो मैं एक वैष्णव, वैष्णव की गोदी में हूं और प्राण त्यागने के लिए बिल्कुल सही जगह है। और इतना ही नहीं, ये इसी स्थान में, इसी गांव में यमुनाचार्य के दादा हमारे प्रिय आचार्य नाथ मुनि ने प्राण त्याग दिया था यहां पर। और एक इसके पहले संत थे तिरुकोल्लुवर, उन्होंने भी यहां पे प्राण त्याग दिया था। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, इसलिए इसमें कोई अशुभ नहीं है अगर मैं यहां पे प्राण त्यागूंगा। और इसके अलावा सुनो कुरेश रतुलाए, अगर तुम शोक करोगे इस बात के ऊपर कि मैंने श्रीरंगम में प्राण नहीं त्याग किया बल्कि और कहीं प्राण त्याग किया, तो आने वाले पीढ़ियां क्या सोचेंगी? वो लोग सोचेंगे कि अगर हमको भगवान के धाम में वापस जाना है तो श्रीरंगम में ही प्राण त्यागना होगा, और अगर श्रीरंगम के बाहर प्राण त्याग दिया तो भगवान के पास अब नहीं जा सकते। लेकिन ये तो गलत है। आदमी अगर शुद्ध भक्त हो तो कहीं भी वो प्राण त्याग करे, वो भगवान के धाम जा सकता है। तो मैं मेरे प्राण त्यागने से ये सिद्ध करना चाहता हूं कि व्यक्ति भक्त की मृत्यु कहीं भी हो जाए, बीच रास्ते में सड़क में हो जाए, सागर में हो जाए, धर्म किसी तीर्थ स्थान में हो जाए, भक्त के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है कि एक अष्टांग योगी को अगर मुक्ति पाना है तो उसको उपयुक्त समय और स्थान ढूंढना चाहिए। दक्षिणायन, उत्तरायण इत्यादि का विचार करना पड़ता है। अगर उत्तरायण के समय एक योगी प्राण त्यागता है एक शुभ घड़ी पर, शुभ स्थिति में, तो फिर वो मुक्त हो सकता है। लेकिन दक्षिणायन के समय इत्यादि अगर वो प्राण त्यागेगा तो फिर उसे पुनः ये संसार सागर में लौट के आना होगा। लेकिन प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में समझाते हैं कि भक्त के लिए ऐसे कोई बंधन नहीं है। भक्त को दक्षिणायन उत्तरायण की परवाह नहीं है। भक्त को यह सोचना नहीं कि मैं वृंदावन में प्राण त्यागूं या किधर प्राण त्यागूं, क्योंकि भक्त जहां भी रहता है वही वृंदावन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी, उन्होंने अपना प्राण कलकत्ता में त्यागा। जब उनके अंतिम दिन थे तो उनके कई शिष्यों ने कहा कि क्या आपको हम मायापुर या जगन्नाथपुरी ले जाएं? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा नहीं, मैं युद्ध भूमि में प्राण त्यागना चाहता हूं। युद्ध भूमि मतलब प्रचार का क्षेत्र, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कलकत्ता में प्रचार कर रहे थे, जो कि बड़ी नगरी है, कलयुग की नगरी, तो माया की नगरी है। आप जानते हैं ये सब शहर सब माया की नगरी है। तो भक्ति सिद्धांत कह रहे थे मैं यहां प्रचार करता हूं और यही मेरा क्षेत्र है, यही मेरा तीर्थ स्थान है, यही मेरा सब कुछ है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने उदाहरण से सिखलाया कि भजनानंदी और गोष्ठानंदी में क्या अंतर है। भजनानंदी भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं, लेकिन वो केवल अपने भक्ति, अपने मुक्ति की चर्चा परवाह करते हैं। वो धाम में रहते हैं और धाम में निरंतर भगवान का भजन करने में लगते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, वो भी भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं। परंतु और एक तरह के शुद्ध भक्त हैं जिनको गोष्ठी आनंदी कहते हैं। ये गोष्ठी आनंदी ये भी शुद्ध भक्त होते हैं, लेकिन धाम में न रहते हुए सारे विश्व भर में भ्रमण करते हैं प्रचार के लिए, सारे धाम को दूसरी जगह ले जाते हैं, क्योंकि सब जगह भक्ति का प्रचार करके लोगों को भक्त बनाते हैं, वहां मंदिरों का निर्माण करते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने किया। अपने बुढ़ापे में वो तो आराम से वृंदावन में रह सकते थे, उनके पास कमरा था, सब कुछ ठीक ठाक था। और 70 साल की उम्र में कौन ऐसे व्यक्ति इधर उधर घूमना चाहता है, वो तो आराम से अपने जगह में रहना चाहता है। लेकिन प्रभुपाद ने निजी अपना कोई आराम की का विचार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मेरे लिए इस समय वृंदावन रहना इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि मुझे वृंदावन को विश्व भर में ले जाना है, मेरे गुरु महाराज का आदेश था मेरे लिए, तो ये आदेश मेरा तीर्थ स्थान है। तो प्रभुपाद 70 साल की उम्र में सब जगह घूमे फिरे, 12 साल लगातार 14 बार उन्होंने विश्व का भ्रमण किया, 108 मंदिर केवल 12 वर्षों में निर्माण किए, हजारों की संख्या में लोग उनके शिष्य बने, 80 से भी ज्यादा उन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे, और इस तरह से भक्ति का प्रचार किया, और इसका असर हम आज देख रहे हैं और आने वाले पीढ़ियां भी देखेंगी कि किस तरह से ये आंदोलन आगे और बढ़ेगा और फैलेगा, आगे चल के ये एक विश्वव्यापी मुख्य धर्म हो जाएगा। केवल एक व्यक्ति जो कि धाम को छोड़कर सारे विश्व को धाम बनाने की चेष्टा में आगे निकल पड़े। तो प्रभुपाद भी कहते थे कि मेरे लिए जहां भक्ति है वही धाम है, और भगवान भी वही कहते हैं कि जहां मेरा भक्त मिलकर मेरा गुणगान करते हैं वही पर मैं निवास करता हूं, और जब जहां भगवान निवास करते हैं वो भगवान का धाम है। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो इस तरह से महापुण्य ने अपने जाते जाते ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया। कई बार ऐसे बताया जाता है कि भक्त न केवल अपने जीते जी उपदेश देते हैं लेकिन अपने मृत्यु के समय भी उपदेश देते हैं। उनका जो मरण है, उनकी जो मृत्यु है, ये भी सबसे बड़ा उपदेश उनका होता है। जब कोई महान वैष्णव जीते रहते हैं तो उस समय अवश्य प्रवचन देते हैं, लोगों को बहुत चीजें भक्ति के बारे में समझाते हैं, स्पष्टीकरण शास्त्रों का करते हैं, बहुत कुछ करते हैं जीते समय, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण उपदेश उनकी मृत्यु होती है। अपने उदाहरण से, अपने आचरण से वो सिखाते हैं कि आदर्श मृत्यु क्या है, क्योंकि उन्होंने आदर्श जीवन जिया है तो वो आदर्श मृत्यु क्या है वो सिखला सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने किया, आदर्श मृत्यु क्या है उन्होंने सिखाया। अंतिम क्षण तक वो श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते रहे, हालांकि प्राय उनको बोलने की शक्ति नहीं थी शरीर में, माइक्रोफोन उनके मुंह के इतने पास में रखा जाता था, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, शरीर तो बहुत कमजोर था लेकिन बुद्धि इतनी तेज, अंतिम क्षण तक वो अपना प्रचार का कार्य चालू रखे। इससे हम जान सकते हैं कि मृत्यु भक्त की उसकी सबसे बड़ा उसका सबसे बड़ा प्रचार का कार्य होता है, जैसे प्रभुपाद को हुआ और महापूर्ण के साथ में भी। देखिए उन्होंने जाते जाते कितने महत्वपूर्ण उपदेश दिए। तो इस तरह से महापूर्ण ने अपने प्राण वहां त्याग दिए। वहां कई लोग सामने आ रहे, अरे ये व्यक्ति मर गए, अभी आपकी सहायता करें कि अंतिम संस्कार करने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं आप चले जाइए। फिर जब वहां अचानक भगवान की योजना से वहां और कोई श्री वैष्णव आ गए और उनकी सहायता से उन्होंने महापूर्ण के अंतिम संस्कार कर दिए, और बड़े शोकग्रस्त अवस्था में फिर वापस श्रीरंगम चले गए। ये सारे जो श्री वैष्णव आए थे उनको सहायता करके वापस श्रीरंगम लेकर चले गए। वहां श्रीरंगम में काफी समय तक रहे कुरेश, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, लेकिन वहां पर चोल राज ने आदेश दिया था कि कोई भी रामानुजाचार्य का अनुयायी इस रंगनाथ के मंदिर में प्रवेश न करे। तो जब वो वहां पर प्रवेश करने गए, उनको तो दिखाई नहीं पड़ता था, केवल हाथों को ऐसे जैसे एक अंधा व्यक्ति करता है, तो हाथों को करके आगे जा रहे थे, और जैसे ही प्रवेश करने वाले थे तो वहां जो संतरी था, जो चौकीदार था, उसने रोका और कहा कि मैं तो जानता हूं कि आप तो कितने महान भक्त हैं, आप कौन हैं, मैं तो आपको छोड़ना चाहता हूं लेकिन मैं क्या करूं, आदेश तो मुझे मिला है कि रामानुजाचार्य के किसी भी अनुयायी को अंदर नहीं छोड़ो, तो अगर आपको अंदर मुझे छोड़ना है तो एक शर्त के ऊपर छोड़ सकता हूं कि आप कहो कि मैंने रामानुजाचार्य को त्याग दिया। तो ये बात को सुनकर अपने कानों को बंद कर दिया कुरेश ने, कहा मैं रंगनाथ को त्यागूंगा लेकिन रामानुजाचार्य को नहीं त्याग सकता, जिन्होंने मुझे रंगनाथ को दिखाया है। और फिर वहां से हड़बड़ाते हुए, जैसे क्योंकि चल नहीं पा रहे थे ठीक से, वहां से फिर से बाहर चले गए। और उसके बाद में कुरेश के जीवन में क्या हुआ, वो कहां गए और आगे कैसी लीलाएं हुई, और फिर आगे रामानुजाचार्य मेलकोटे से, यादवाद्री से आगे चलकर श्रीरंगम लौट के आए, वहां क्या क्या लीलाएं हुई, उनके अंतिम दिन कैसे उन्होंने बिताए इत्यादि, इसके बारे में अगर आपको सुनना है तो आपको अगले एकादशी में आना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।